معزز خواتین و حضرات, آپ کا میزبان حارث خلیق سلام پیش کرتا ہے. اور آج جو ہم وائس آف امریکہ کے نے جو پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کیا ہے پاکستان کے 75 سال سے متعلق, اس میں ایک نئی کڑی, اس لڑی کی ایک نئی کڑی کے ساتھ حاضر ہیں. اور آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں جو سیاسی قیدیوں اور سیاسی جلا وطنیوں کے 75 سال ہیں. چونکہ ظاہر ہے کہ ایک بڑی چیکرڈ سی ہسٹری ہماری رہی ہے جمہوریت کے سوال کو لے کر, یا قومی حقوق کے سوال کو اٹھا کر, یا جو طبقاتی سوال ہمارے ہاں رہا ہے. تو یہ ان تمام کے جو کا جو نشانہ بنے ہیں وہ سیاسی کارکن بنے ہیں. ویسے تو ہمارے بڑے بڑے سیاسی رہنما بھی جلا وطنی کا شکار رہے ہیں, لیکن جو سیاسی کارکن ہیں وہ انسنگ ہیروز ہوتے ہیں. اور نئی نسل کے علم میں اور ہمارے سننے والوں کے سامعین کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سی قربانیاں تھیں جن کی بنیاد پر آج جو اگر ہم اجتماعی شعور کو آگے بڑھا ہوا دیکھتے ہیں, یا جمہوری آزادیوں کے لیے اپنا حق مانگنا ہم سمجھتے ہیں کہ اب لوگوں نے سیکھ لیا ہے یا کسی حد تک بات آگے بڑھی ہے, تو وہ کون لوگ ہیں اور وہ کون سی قربانیاں ہیں جس نے یہ سب ممکن بنایا. تو آج اس پہ گفتگو کرنے کے لیے سیاسی قید و بند اور سیاسی جلا وطنی, اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے میں لندن میں موجود ہوں. اور میرے مہمان ہیں جناب اکرم قائم خانی. اکرم قائم خانی کا تعلق سندھ سے ہے, کراچی میں انہوں نے بیشتر اپنا وقت گزارا ہے سیاسی جد و جہد کا, اور اس میں جیلیں کاٹی ہیں, اس میں جلا وطنی کا شکار رہے ہیں, اور اب یہاں برطانیہ میں موجود ہیں. ساتھ ہی امتیاز علی خان صاحب ہیں. امتیاز علی خان صاحب نے پنجاب میں سیاست کی ہے, پنجاب میں طلبہ سیاست, پنجاب میں سیاسی حقوق, جمہوری حقوق کی سیاست, لاہور کے قلعے میں انہوں نے قید و بند کی صعوبتیں اور ٹارچر کا سامنا کیا ہے. امتیاز علی خان صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں, میں ممنون ہوں آپ دونوں کا کہ آپ تشریف لائے اور یہ بھی اب جلا وطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے. تو یہ آج کا موضوع ذرا مختلف ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ ان سیاسی کارکنوں کی صعوبتوں کو اور ان کی مشکلات کو یاد کیے بغیر ہم پاکستان کی آج کی صورتحال اور آج کی جو سیاسی اس وقت ایک میں سمجھتا ہوں کہ انتشار ہے اس سے بھی نہیں سمجھ سکتے. اور یہ جو کمی واقع ہوئی ہے کہ ایک کمیٹڈ سیاسی کارکن, ایک وفادار سیاسی کارکن جیسا پہلے ہم دیکھا کرتے تھے 60 کی دہائی میں, 70 کی دہائی میں, 80 کی دہائی میں اور 90 کی دہائی تک, وہ ہمیں 21ویں صدی میں کیوں نہیں نظر آتا. تو ان سب پہ گفتگو کرنے کے لیے اور ان کی ذاتی زندگیوں سے متعلق بھی جاننے کے لیے, چونکہ یہ جو دو حضرات یہاں موجود ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ علامت ہیں, یہ سمبلائز کرتے ہیں اس پوری سیاسی جدوجہد کو جو محض رہنما نہیں چلاتے, بلکہ اگر کارکن نہ ہو, اگر سرگرم فعال کارکن نہ ہو, ایکٹیوسٹ نہ ہو, تو وہ تحریکیں کامیاب ہونا تو درکنار چل ہی نہیں پاتی. تو میں اگر آپ اجازت دیں امتیاز, تو میں پہلا سوال اکرم قائم خانی صاحب سے کروں کہ ذرا پہلے تو اپنی زندگی کے بارے میں بتائیے, کہاں پیدا ہوئے, کب سیاست شروع کی اور پھر کیا گزری, اور پھر مجھے میرے علم میں چونکہ ہے کہ پاکستان سے افغانستان کیسے پہنچے, پھر وہاں سے لیبیا, پھر وہاں سے یورپ, ذرا کچھ اس پر روشنی ڈالیے.
بہت بہت شکریہ حارث بھائی, آپ نے بڑا بہت ہی شاندار موضوع پر یہ سلسلہ شروع کیا ہے, اور بڑا اچھا خیال ہے وائس آف امریکہ کا کہ پاکستان کے 75 سال کو سیلیبریٹ کیا جائے اور ہم نے آزادی کیسے حاصل کی. تو اس کے ظاہر ہے کسی ملک کی آزادی کے حاصل کرنے میں ایک طویل عرصہ لگتا ہے, جد و جہد ہوتی ہے, مختلف قسم کے لوگ اور جو ہے وہ جد و جہد میں حصہ لیتے ہیں. تو ظاہر ہے آپ نے یہ کوشش کی کر رہے ہیں آپ کے مختلف زندگی کے جو حصے ہیں ان کو اجاگر کریں, بڑی مہربانی, نوازش آپ کی. اور یہ ایک بہت ہی اہم جو ہے موضوع ہے کہ ہم سیاسی کارکن جو کہ سیاست پر یا پاکستان میں سیاسی تبدیلیوں پر یقین رکھتے ہیں, ہمارے ساتھ کیا گزری ان 75 سالوں میں, اور یہ لوگوں تک یہ بات جائے. تو جہاں تک آپ نے پوچھا میرے بارے میں, تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں پیدا ہوا جیمس آباد میں, جس کا نام بعد میں تبدیل کر کے کوٹ غلام محمد کر دیا گیا. اور تو کوٹ غلام محمد تھرپارکر ڈسٹرکٹ کا ایک گاؤں ہے, उसमें मैं पैदा हुआ, और एक कहना चाहिए मुतवसत घराना कहिए कि गरीब घराना कहिए, मतलब कोई आम से घराने में पैदा हुआ। और हमारा बैकग्राउंड आपको पता है, जैसे कि कायम खानी नाम से सभी जानते हैं कि हमारा बैकग्राउंड फौजी बैकग्राउंड है। हमारे ज़्यादातर रिश्तेदार और बुज़ुर्ग, मेरे घर के अपने दादा नाना वगैरह सब फौजी थे। तो और ज़िया ज़मींदारी, हमें फौज में रिटायरमेंट के बाद आपको पता है ज़मीनें वमीनें मिलती हैं, तो उसके बाद वो ज़मींदारी करते हैं। तो ये हमारा बैकग्राउंड है। तो मैं वहाँ पैदा हुआ और उसके बाद वहाँ जैमसाबाद में मैं पहली क्लास में स्कूल गया, और पहली क्लास में स्कूल गया, उसके बाद जो है वो बड़ी अच्छा, मुझे बड़ा शौक़ था स्कूल जाने का, स्कूल में दाखिला लेने का। तो मैं अपने दादा के साथ बड़ी इज्जत करके स्कूल पहुँचा, स्कूल में दाखिल हो गया। फिर एक साल के बाद ही मेरे वालिद जो हैं उन्हें कोई ज़मींदारी से या इनसे शौकीन था, वो ज़रा पढ़ाई की तरफ ज़्यादा थे, तो उन्होंने अपना बीकॉम किया उस वक्त वहाँ, वो उस ज़माने में हैदराबाद में थे। मेरी उनकी छोटी उम्र में शादी हो गई थी, तो मैं उनका दूसरा बच्चा था। पहला मेरा बड़ा भाई, वो एक साल के बाद उसकी, और यहाँ मतलब हैरान की बात है कि मेरी वालदा सिर्फ 15 साल की थी जब मैं पैदा हुआ, तो बहुत छोटी सी थी, और उनको पता भी नहीं था कि बच्चे क्या होते हैं। और उसकी उनकी थोड़ी सी ज़रा जैसे कहना चाहिए, वैसे तो खैर पानी, गंदे पानी की वजह से मेरी टांग मुतासर हुई, और लेकिन यह कि मेरी वालदा हमेशा अपने आप को समझती है कि मैं बहुत छोटी थी, मैं तुम्हारी केयर नहीं कर सकी, इसलिए तुम्हारी टांग जो है वो पोलियो का शिकार हो गई। खैर एनीवे, तो वो मैं हमारे वालिद साहब को नौकरी मिल गई कराची में, तो वो उन्होंने फैसला किया कि भाई मैं जो है वो कराची जाऊँगा, और अपने बच्चों को लेके कराची आ गए। ये कोई 62 की बात है,
1962 की,
जी हाँ 1962 की बात है। 1962 में वो आ गई, और हम लोग आ गए कराची, और 62 या 63 की बात है, क्योंकि एक या दो साल बाद 62 की जंग हुई थी, मुझे याद है अच्छी तरह। तो हम आ गए वहाँ पे, और आने के बाद कराची में मैंने स्कूल अपना बाकायदा स्कूल शुरू किया। तो वहाँ मुकामी स्कूल था, रोजलिन इंग्लिश स्कूल, वहाँ पे मैंने पढ़ा। उसके बाद फिर किंग इंग्लिश स्कूल था, वहाँ पढ़ा, और इस तरीके से करते करते फिर मैं मैट्रिक वहाँ से हुआ, और मैट्रिक मैंने वहाँ से बल्दिया बॉय सेकेंडरी स्कूल था, वहाँ से मैट्रिक किया कराची से।
ये बताइए कि सियासत में, यानी तलबा सियासत और फिर अमली सियासत में, मैट्रिक के ज़माने में आ गए थे या उसके फ़ौरन बाद आए?
देखिए जनाब, आपका सवाल बड़ा अहम है, और मैं आपको सच बताता हूँ कि बिल्कुल मैंने उसी ज़माने में, जो मैं मैट्रिक से पहले गिरफ्तार हो चुका था एक दफ़ा, यानी मेरे ख्याल में 8वीं में था, तो मैं जब इलेक्शन लड़ा था वहाँ से, और वहाँ से मैं अपने स्कूल में बड़ा पॉपुलर था, और भुट्टो साहब पॉपुलर लीडर के तौर पर उस ज़माने में छाए हुए थे, और उनकी पॉपुलर स्टाइल जो था तख्ली करने का, वो मैं उसको कॉपी करता था, और उसकी वजह से मैं स्कूल में जब इलेक्शन हुआ तो मेरे ख्याल में मेरे मुकाबले में 32 बच्चे इलेक्शन लड़ रहे थे, और 32 के 32 जो है कोई 5 वोट, कोई 4 वोट, कोई 6 वोट था, पूरे स्कूल ने मुझे वोट दिए सारे के, तो बड़ा मोस्ट पॉपुलर मैं बन गया स्कूल में। तो स्कूल से ही, लेकिन मेरा रुझान इस्लामी जमीयत तलबा की तरफ था, क्योंकि मेरा जो घराना था बुनियादी तौर पर शाह नूरानी के फॉलोअर्स में थे हम, मतलब मेरे वालिद उनको अपना बड़ा मानते थे, और वो उनके साथ, लेकिन स्कूलों में आपको पता है हमेशा उनकी कोई जमात इतनी पॉपुलर नहीं हुई नूरानी साहब की, तो वहाँ जो मेरी तरह के बच्चे थे वो इस्लामी जमीयतुलबा की तरफ रुजू करते थे। तो मैं इस्लामी जमीयतुलबा की बिल्कुल इब्तदाई नशिस्तों में जाना शुरू हो गया, और मुझे वो एक लीफलेट मिला करता था कि भाई मैंने कितनी नेकियां की, कितनी बदी की, कितने लोगों को क्रॉस कराया, वो मैं भर के फॉर्म दिया करता, अपने नाजिम को दिया करता था भाई कि मैंने ये किया। और मुझे याद है कि उस जानिब से मुझे जो पहली किताब पढ़ने को मिली वो थी पेट्रोलियम की कहानी, तो वो हर एक को देते थे। तो ये एक इस तरह से सिलसिला चलता रहा। उसके बाद फिर जब मैं इलेक्शन जीता, तो जारी मेरी मुझ पर नजरें उस तलबा तंजीमों की, दीगर तलबा तंजीमों की,
स्कूल का इलेक्शन जीते आप,
जी हाँ, मैं स्कूल का इलेक्शन जीता और उस इलेक्शन के जीतने के ऊपर जो है मुझ पर वहाँ पे मुकामी तौर पे जो दूसरी जमाती थी उनकी नज़रों में मैं आ गया, नुमाया हो गया। तो वहाँ हमारे यहाँ एक दोस्त होते थे हमारे, डॉक्टर निहाल, जफर निहाल, वो शायर भी थे और वो बाद में उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट बने और रूस सिप्ते हसन साहब ने उन्हें भेजा था, डॉक्टर बन के आए थे वहाँ से रूस से और यहाँ कराची में भी रहे, जिन्ना हॉस्पिटल में काम करते थे। निहाल, जफर निहाल ने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो आज शाम को एक मीटिंग है, तुम मेरे साथ चलना। अच्छा, मुझे थोड़ा सा शुरू से ही एक बड़ा शौक था मैं कुछ ना कुछ करूं, यानी नुमाया करूं। आई डोंट नो क्यों था, लेकिन मैं कभी नाते पढ़ता था, कभी कुछ करता था, मतलब कुछ ना कुछ मैं करता था ताकि मैं एक कहते ना न्यूज में रहूं। तो मैंने कहा मीटिंग तो बहुत जरूरी, चलना चाहिए। तो मैं मीटिंग में फौरन गया, तो वो मेरी पहली मीटिंग थी, नुक्ता आगाज जिसे आप कह सकते हैं मेरी सियासत का, तलबा सियासत का। और मैंने बाकायदा समझ लीजिए एक तरह से NSF, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन, वहाँ ज्वाइन कर ली और वहां से फिर ये सिलसिला जारी रहा।
बहुत बहुत शुक्रिया अकरम कायम खानी साहब, ये एक पस मंजर हमारे सामने आ गया, लेकिन अब आगे आते हैं आपकी जिलावतनी वगैरह की तरफ और जो आपने कैदोबंद की सहूबतें बर्दाश्त की। मगर इम्तियाज क्योंकि बैठे हुए हैं और बड़ी तवज्जो से सुन रहे थे जो आप अपने बचपन का हाल सुना रहे थे, तो मैं इम्तियाज से भी यही पूछूंगा, इम्तियाज अली खान साहब से, कि जरा अपनी जो इब्तदाई साल कैसे गुजरे और किस तरह से सियासत में आए, क्योंकि आप तो गिरफ्तार भी बहुत बहुत जल्दी हुए थे आप दोनों ही, लेकिन आपकी भी बहुत मेरे ख्याल है टीन एज में थे जब आपको किले भेजा गया।
पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे आपने इस प्रोग्राम में मधु किया और आपने माजी में की जो यादें हैं आप दोस्त आपके साथ दोस्तों के साथ शेयर कर सकूं। मेरी तो जहां तक मुझे जहां तक याद आती है कि मुझे मैं जब स्कूल में पढ़ता था ना रावलपिंडी में, वो उसका नाम था सर सैयद स्कूल, उसके साथ ही कॉलेज हुआ करता था सर सैयद कॉलेज। ये मुझे मैं खैर 12 साल की उम्र थी मैक्सिमम, तो मुझे याद है कि उसको 70 का पहला स्टूडेंट इलेक्शन था, तो मुझे उसको अम्मी वो कोई लंच दिया करती थी, तो कभी जब छुट्टी होगी आप खा लेना स्कूल पे, तो वो इलेक्शन मुझे अभी तक याद है, पहला इलेक्शन जब हुआ था मैं वो सर सैयद स्कूल से सर सैयद कॉलेज चला जाता था। जब मैं सर सैयद कॉलेज चला जाता था तो फिर मैं वापसी, मुझे पता था जी कि 40 मिनट की ब्रेक है, फिर 40 मिनट मैंने स्कूल वापस भी जाना है, और मैं अपना जो लंच था वो मैं भूल जाता था और लंच के साथ ही मैं घर आ जाता था। जब अम्मा वो मेरा बैग खोल दी थी, कहे तूने खाया नहीं आज, तो मैं अम्मा को कहता था मैं भूल गया हूँ, फिर भी भूल गया। तो अम्मा कहे तुम्हें हमें लंच देते, तो मुझे पता था कि मैं वहाँ नारे मारने जाता हूँ, मुझे पता था, मुझे याद था उसका जब प्रेसिडेंट था फयाज मलिक था, जिस मेकर 71-72 की बात जब थी, तो वो एक शौक था कि चलो यार वहाँ इलेक्शन हो रहा जाके नारे हरे लगाओ, जिंदाबाद फयाज आ गया मैदान में है जमा लो। तो वो फिर जब थोड़ी उम्र गुजरी और थोड़ा और बड़े हुए, तो फिर मेरी अपने तरक्की पसंद दोस्तों से तलक बना, उनसे सीखने का मौका मिला, मैं 14-15 साल की उम्र में स्टडी सर्कल में जाने का मौका मिला।
तब आप लाहौर में थे या
पिंडी में? पिंडी में सारी स्टोरी पिंडी की। तो उनसे कुछ सीखा कि दुनिया में उन्होंने हमें जो हसबे रवायत सबसे पहले उस उम्र में हमें माँ दे दी, हमने माँ पढ़ी जो उसका
मैक्सिम गोरकी का
नावल हमने पढ़ लिया बहुत छोटी उम्र में, और चीज़ें सीख ली। लेकिन जो तड़प पैदा हुई ना वो भुट्टो साहब की फांसी ने दी हमें, जो क्योंकि मेरे अब्बा पीपल्स पार्टी के थे, भुट्टो से प्यार करते थे, और जिस दिन भुट्टो को फांसी हुई मेरे अब्बा घर में रोते थे, और हम भी उसको छोटे थे, लेकिन
4 अप्रैल 1979
को तो अब्बा कहा करते थे उसका, तो ये हमारे जियाउल हक ने बिरूनी साम्राज्यों के कहने पे जो अली भुट्टो को आज फांसी दी है। तो तो फिर अंदरूनी तौर पे जिन्होंने फांसी दी और बिरूनी तौर पे जिन्होंने उसका साथ दिया, तो एक एक होता है ना कि इंसान जब सोचता है कि हम गुलाम हैं और किन के गुलाम हैं, तो वो एक शोर पैदा हुआ कि हम इन दोनों के गुलाम हैं। पाकिस्तान में, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को अलग एक अलग मुमलकत तो बन गई लेकिन आज़ाद नहीं हुआ। वो आज़ादी की तड़प ने हमें स्टूडेंट यूनियन में जाना पड़ा, और स्टूडेंट यूनियन में जाके जो हम उस वक्त कर सकते थे अपने शौर के मुताबिक, अपनी उम्र के मुताबिक, जो हमने किया, और फिर आगे एक अपनी एक हिस्ट्री है।
वो बताइए, मतलब कब फिर जेल कब गए?
जेल में गया, हमारे स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन था पिंडी में 81 में।
किस कॉलेज में थे आप?
मैं था जी गार्डन कॉलेज में, गार्डन कॉलेज में, गार्डन करावल पिंडी में था। हमारा स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन था, तो उसका तो हमारा हजब रवायत जमीयत से हमेशा उस रवायत थी, हम उनके खिलाफ ही इलेक्शन उससे पहले भी काम किया, उसके बाद भी किया। और फिर हमें इलेक्शन के बाद हमारे को जो दोस्त थे उनसे हमारे रबते हुए उन्होंने हमें बताया गया कि हमें ये फौजी हैं, ये प्यार से नहीं जाएंगे, ये किसी ताकत से जाएंगे। तो उसको उम्र का तकाजा था, हमने भी इतना सोचा ना समझा, शौर था, एक जज्बा था, और हम निकल गए। और फिर मैं 1 दिसंबर 1981 में मैं गिरफ्तार हो गया, दिसंबर 1981 में गिरफ्तार हो गया। मैं घर आ रहा था कॉल से, तो मुझे रास्ते में
एग्जाम क्या लगा था?
एग्जाम तो उसका तो खाली ले गए, एग्जाम से देखे आपके पास असला है, आपके पास असला छुपा हुआ है, आप हमें इतलाया आपके पास, जो आपके पास वेपन्स हैं और आपके पास लीफलेट्स हैं। तो वो फिर रावलपिंडी के थानों में मुझे रखा गया। तो उसके बाद मुझे मेरा ख्याल एक 1.5 महीना रावलपिंडी के मुख्त थानों में रहा, फिर मुझे शाही किले ले गए
लाहौर
शाही किले में। फिर वहाँ जो टॉर्चर हुआ वो हुआ, तो उस टॉर्चर में ये हाल था कि पूरा एक साल लाहौर किले में रहा। फिर लाहौर किले से मुझे वारिस लाल किला है लाहौर में, वहाँ शिफ्ट कर दिया गया कुछ 6 महीने के लिए, वारिस खान में महल लाहौर में,
थाना वारिस खान
में वहाँ क्या कर दिया। फिर मुझे वहां से शाही किले में शिफ्ट किया, वहां से मतलब दोनों में डिफरेंट टाइप की इंटरोगेशन थी, डिफरेंट टाइप का टॉर्चर था जो बर्दाश्त किया, और जो शाही किले में टॉर्चर हुआ वो अपने दोस्तों की चीख तकलीफें भी सुनते रहे, सोते कम थे, दोस्तों की चीखें सुनते थे, रात को खामोशी में ज्यादा आवाज आती है दूर तक। तो दोस्तों ने बहुत जद्दोजहद की, बड़े कमिटेड दोस्त थे।
आप रिहा कब हुए?
मैं हूं जी 87 में।
6 साल आप?
6 साल।
87 में रिहा होने के बाद फिर जलावतनी इख्तियार?
नहीं जी, 87 के बाद नहीं, कि मैं उसके बाद नहीं, 87 के मैं यूके में आया हूं 92 में।
अच्छा 92। मैं अकरम कायमखानी साहब की तरफ वापस जाता हूं। अकरम भाई ये बताइए कि फिर आपकी गिरफ्तारी और उसका अहवाल जरा क्या था? आप भी मेरा ख्याल गालिबन 1981 में ही गिरफ्तार हुए या 1979 में हो गए थे आप गिरफ्तार? 79 में
गिरफ्तारी, अगर आपका मतलब है आखिरी गिरफ्तारी।
आखिरी गिरफ्तारी
जो है वो 81 में हुई, मार्च में, जब ये प्लेन हाईजैक हुआ उससे कोई 10-12 दिन पहले। ठीक है, क्योंकि मतलब 14-13 दिन हाईजैकिंग रही है मेरे ख्याल में, इससे पहले जिस हाईजैकिंग जो शुरू हुई है
सलामुल्लाह उर्फ टीपू ने,
उससे थोड़े से दिन पहले
1981 में जो जहाज हुआ किया था और काबुल ले गए थे।
काबुल ले गए, तो वो वहां मैं उस वक्त पीएसएफ का जनरल सेक्रेटरी था, कराची का
पीपल स्टूडेंट्स फेडरेशन।
जी हाँ, पीएसएफ का जनरल सेक्रेटरी था, और हम मूवमेंट चला रहे थे, स्टूडेंट्स के अलायंसेस बने हुए थे पूरे पाकिस्तान में, और पूरे पाकिस्तान में जो है वो गिरफ्तारियां भी हो रही थी और तालीमी इदारे बंद थे। سوائے کراچی یونیورسٹی کے, اور حکومت کا اور خاص بے ماشاء اللہ حکام کا یہ تھا کہ کراچی یونیورسٹی کو بند نہیں ہونے چاہیے. وہ یہ ان کا ایک موڑ تھا. کراچی یونیورسٹی بند ہونے سے پوری دنیا میں ایک زیادہ بات پھیلتی ہے کہ تعلیم اداروں میں کہیں بھی ہوتا رہے کچھ بھی, کراچی یونیورسٹی جو ہے وہ بند نہ ہو. تو ہمارا بھی, ہمارے دماغ میں بھی یہی تھا, اسٹوڈنٹس جتنے لوگ جمع تھے, کہ کچھ بھی ہو ہمیں کراچی یونیورسٹی کو بند کرنا ہے تاکہ پورے پتہ چلے کہ طلبہ جو ہے بے چین ہیں اور ہمارے مسائل ہیں. تو ہم نے پلان بنایا کراچی یونیورسٹی کو کے اندر مظاہرہ کرنے کا, اور مظاہرہ کر کے ہم نے کہا کہ وہاں مظاہرہ کریں گے اور نعرے لگائیں گے اور کوشش کریں گے کہ وائس چانسلر کو مجبور کریں کہ وہ یونیورسٹی بند کر دے. تو وہ اس دن جو ہے وہ ہم نے کیا. تو خیر وہ مظاہرے کے لیے سب لوگ جمع ہوئے, تمام کراچی سے طلباء جو تھے مختلف کالجوں کے, ہمارے یونٹ سیکرٹریز اور ان کے ساتھ طلباء وہاں جمع ہوئے, اور ہم کراچی یونیورسٹی میں جمع ہو رہے تھے. جمع ہوتے وقت ساتھ ہی میں کیا ہوا, ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم جلوس نکالیں گے اور آ کر مظاہرہ کریں گے, اور اس کے بعد پوائنٹس جو ہوتے, پوائنٹس ہم کہتے ہیں ان بسوں کو جن میں طلباء آتے ہیں, کہ ان میں بیٹھیں گے اور ہم شہر چلے جائیں گے, اور گرو مندر میں ہم, ہمارا مین ٹارگیٹ تھا وہاں گا کہ ہم جلسہ کریں گے اور مظاہرہ
کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے نزدیک.
بالکل یہ ہمارا منصوبہ تھا, لیکن وہاں ابھی یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا کیونکہ ابھی ہم جمع ہی ہو رہے تھے کہ اچانک ایک بدنصیب ہمارے میجر صاحب, عام طور پہ اس زمانے میں نہ پولیس باوردی جامع کراچی میں آتی تھی نہ فوج, تو سوال ہی نہیں ہوتا, پولیس ہی نہیں آ سکتی تھی تو فوج تو کیا بات. تو وہ اتفاق سے میجر صاحب صاحبزادی کا داخلہ کرانے وردی میں آ گئے یونیورسٹی میں, اور آنے کے بعد انہوں نے اپنی گاڑی کھڑی کی ایڈمنسٹریشن کے نیچے, اور فوجی ان کا ساتھ میں سپاہی تھا, اس نے اتر کے, اور لوگ حیران ہو گئے, وردی میں ماشاء اللہ کا دور تھا مطلب, لیکن فوج نہیں آ سکتی تھی یونیورسٹی میں, لیکن لوگ حیران تھے آیا کیوں ہے, کون آدمی ہے. یہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ بچی کا داخلہ کرانے وغیرہ کا کس سلسلے میں آیا تھا, لیکن اینی وے وہ صاحب آئے, تو جیسے ہی وہ آیا تو کھلپلی مچ گئی, اور وہ سب ظاہر میں لوگوں کو جمع کر رہا تھا جلوس کے لیے, تو میرے پاس بھاگے بھی لوگ آئے کہ جو ہے آرمی چیف یہاں ہے اور آرمی کا افسر آیا ہے یونیورسٹی کے اندر. تو قائم خانی بھائی یہ کیسے ہوگا, میں نے کہا یار یہ تو صحیح, آؤ جلوس لے کے چلتے ہیں اس کے خلاف نعرے لگاتے ہیں. ہم جلوس بجائے اس کی کہیں اور جاتا, ہم ایڈمنسٹریشن بلاک کی طرف آ گئے اور جلوس نعرے لگاتے ہوئے, اور آپ کو پتا اس زمانے کے فیمس نعرے اگر آپ کو یاد ہوں تو یہی ہوتا ہے, فوج کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے نعرے جو لگا کرتے تھے, وہ
لاٹھی گولی کی سرکار
نہیں چلے گی, نہیں چلے گی, جنرل کرنل کی سرکار نہیں چلے گی, یہ لگاتے ہوئے ہم آ گئے ایڈمنسٹریشن بلاک پہ. وہاں پہ گاڑی کھڑی تھی اور لوگوں نے اس پہ حملہ بول دیا اس کو, اس کے بعد وہ بیچارہ جو سپاہی تھا اس کو تو ہم نے بھگا دیا, ہم نے کہا بھائی تم بھاگ جاؤ, تمہارا کیا کال لینا دینا, تم جاؤ. وہ بیچارہ وہاں سے بھاگ گیا, اس کے بعد لوگوں نے اس کو آگ لگا دی جیپ کو. اس جیپ کو آگ لگنے کی وجہ سے وہ اتنی بڑی خبر بن گئی کہ بی بی سی اردو سروس کی جو ہے اس زمانے کی سب سے اہم خبر تھی, شام کی پہلی خبر تھی کہ آرمی جیپ کو آگ لگا دی گئی اور یونیورسٹی بند ہو گئی. جو کہ ہمارا پرپس تھا کہ یونیورسٹی بند ہو جائے, وہ یونیورسٹی اس دن اناؤنس کر دیا گیا کہ یونیورسٹی بند ہو گئی. اور مجھے وہیں سے جمعیت طلباء کے کونڈوں نے, جو تھنڈر اسکواڈ کہلاتے تھے, تھنڈر اسکواڈ نے ہم پہ حملہ کر دیا, اور ظاہر اس وقت ہماری کوئی طاقت تو تھی نہیں کیونکہ ہم تو صرف مظاہرے کے لیے جمع ہو رہے تھے, نہ کوئی ہنگامہ نہ کوئی اور ارادہ تھا ہمارا. تو وہ انہوں نے مجھے گھیرا, مجھے مارا, اور بڑے نامور صحافی آج کل ہیں آپ کے پاکستان میں جنہوں نے باقاعدہ مجھ پہ حملہ کیا اور مجھ کو مارا. اور آپ کو پتا ہے وہ انگریزی کے نامور صحافی ہیں زرار خان صاحب, وہ ابھی اس وقت چیف ہیں, اور میرا دوست بھی ہے, وہ بہت میرا گہرا دوست ہے. اب وہ لیڈ کر رہا تھا اس گینگ کو جنہوں نے مجھ پہ حملہ کیا اور جنہوں نے مجھے مارا. اور ایک ہمارے امریکہ میں ہوتے ہیں دوست فاروق سعید, آج کل وہ بھی میرے بہت بہت گہرے دوست ہیں, وہ بدماش نمبر دو تھے جو حملہ آور میں شامل تھے. تو یہ ان لوگوں نے اٹیک کیا, اس کے بعد مجھے اریسٹ کر کے پکڑ کے ایک کمرے میں بند کر دیا, और फिर वेट किया गया जब तक पुलिस या फौज या जो भी लोग मुकामी इंतजामिया वो आ जाए, और वो आ गई, उसके बाद उनके हवाले कर दिया गया। ये थी मेरी गिरफ्तारी, जो मैं वहां से गिरफ्तार हुआ।
अच्छा ये बताएं अपना अकरम कायमखानी साहब कि आपने एक बात की कि वो मेरा दोस्त है, और आपने ये भी कहा कि वो एक और साहब वो भी मेरे दोस्त हैं, और आपने बहुत ही एक, चूंकि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, सामईन को तो चेहरा नहीं नजर आ रहा, लेकिन एक बहुत ही एक इत्मीनान और मुतमईन मुस्कुराहट के साथ आपने ये कहा कि भाई बदमाश हैं मगर मेरे दोस्त हैं। तो ये जो रवादारी थी, यानी जाहिर है कि इस्लामी जमीयत तलबा का एक दौर था, और आप तो शुरू में खुद उसकी तरफ रागिब रहे, वैसे तो हमारे मरहूम प्रोफेसर मुनव्वर हसन भी पहले नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन में थे और फिर इस्लामी जमीयत तलबा में चले गए और फिर जमा इस्लामी में चले गए। तो ये मुझे बताइए कि ये तलबा का आपस के जो मामलात थे कि एक तरफ इख्तलाफ भी है और दूसरी तरफ दोस्तियां भी हैं, तो अब हमें वो नजर नहीं आता। अब तो सियासी जो मुखालिफिन हैं वो तो एक दूसरे को बगैर गाली के गुफ्तगू नहीं करते।
हाँ,
तो ये कैसे मुमकिन था उस जमाने में?
बहुत ही अहम बात आपने की। उसकी बुनियादी वजह यह है हारिस साहब कि उस जमाने में हमारी नजरियाती हमारा नजरियाती इख्तलाफ था। हम उसे अच्छी तरह समझते थे कि हम क्यों एक दूसरे के, हमारी कोई जायदाद के, शक्ल के, तहजीब के या जाती कोई लेन देन के झगड़े नहीं थे, बल्कि वो नजरियाती इख्तलाफात थे जिसकी बुनियाद के ऊपर हम एक दूसरे का एहतराम भी करते थे। और आपको मैं मजे की बात बताऊं, मैं जमीयत के वालों के घर में छुपा रहा हूं, क्योंकि हमें यकीन था कि उनके घर पर कभी कोई आएगा नहीं मुझे गिरफ्तार करने के लिए, जाहिर सोचेंगे ही नहीं कि मैं वहां गिरफ्तार, मैं वहां छुपा, तो मैं छुपा रहा हूं। कई कई मौकों पर ऐसा हुआ है, और वो जमीयत के लोगों को हमने पनाह दी है बहुत मरतबा, बहुत सारी चीजों से बचाया है, बहुत सारे वाकयात से बचाया है। लेकिन ये रवादारी हमारी सियासत से, हमारी सियासी तरबियत से आती थी, जिसका फुकदान है। और इसका सरासर इल्ज़ाम नहीं बल्कि इसके लिए जिम्मेदार हैं हमारे पाकिस्तान के नामवर हुक्मरान जनाब जनरल ज़ियाउल हक़ साहब, जिन्होंने अपनी मेहरबानियों से इस पूरी तहजीब को, इस पूरे कल्चर को हमारी पाकिस्तान की काया पलट के रख दी। वो जो गोके इससे पहले भी हमारी तारीख में ऐसी बातें मिलती हैं कि ऐसे वाकयात हुए वगैरह, लेकिन ज़ियाउल हक़ साहब ने बाकायदा मंसूबा बंदी के तहत जो है वो पूरी सियासत को, सियासी कल्चर को, तलबा तंजीमें ख़त्म कर, तलबा यूनियनें ख़त्म कर दी, ट्रेड यूनियनें ख़त्म कर दी, जो इंस्टीट्यूशंस थे, जो जो सियासी वर्कर बनाते थे चाहे लेफ्ट के हों या राइट के हों, वो सब ख़त्म कर,
नजरियाती सियासत ख़त्म कर दी, और बल्कि सियासत ही के खिलाफ एक पूरा सिलसिला और सियासत को गाली बना दिया। इम्तियाज, मैं आपकी तरफ आऊँगा और मैं ये पूछूंगा कि 6 बरस आपने जब जेल में गुजारे, कोई ऐसा लम्हा आया जिसमें आपको निदामत हुई हो और आपको ये लगा हो कि बस अब कुछ माफीनामा वगैरह जमा कराऊं जाऊं, क्योंकि टॉर्चर सहना और इतना यानी तशद्दुद सहना और 6 बरस तक सहते रहना, ये तो एक बहुत बहुत मुश्किल अमल है।
नहीं, मेरे उस दौर में मुझे याद है कि 3 से 4 हजार मेरे दोस्त आए गोलकपुर जेल शहकली में आए, कोई जल्दी रहा हो गए, कोई बाद में आए, सब मेरी हिस्ट्री से जानते हैं मैंने जेल और शहकिला कैसा गुजारा, किन हालात में गुजारा। मुझे कोई ना नदामत थी ना है ना ऐसा कभी मौका फिर आया तो कभी होगी। तो मैं एक पॉलिटिकल वर्कर था और हूँ, मुझे पता था कि मैं जो कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अब्बा क्या करते थे कि जो ये जो तुम काम कर रहे हो थोड़ा गुरीला कार्रवाई है, जो गुरीले ना वो जान दे देते हैं, राज नहीं देते। तो मैं ट्रेनिंग के बगैर ही गुरीला बन गया था। तो तो ये मुझे अब्बा क्या करते थे, कहते कि ये हिस्ट्री है, क्यों तो मेरे दोस्त जानते हैं कि जो मुझ पर टॉर्चर हुआ, मैं बताना नहीं चाहता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बस ये मैं जानता हूँ कि जो हो गया, तो मैं अभी भी कायम हूँ। मेरा जो सियासी फलसफा है ना, मेरे में उसमें ना मैंने पहले कंप्रोमाइज किया है, ना आज कंप्रोमाइज कर रहा हूँ ना करूँगा।
लेकिन जिला वतनी तो इख्तियार करना पड़ी ना इम्तियाज़।
वो जलावतनी में कई सिर्फ ईमानदारी की बात है कि जलावतनी की दो दो या तीन उसकी वजुहत थी ना, बस एक बात थी कि मेरे माँ बाप थक गए थे पुलिस आ आ के, पुलिस घर में आ के गालियां खा खा के, मेरे माँ बाप, बहन गालियां खा खा के, भाई गालियां खा खा के। एक तो मेरे माँ बाप थक गए थे, क्योंकि एक लोअर क्लास का बाप 6 साल पिंडी से हर महीने कठली थोड़ा सामान लेके लाहौर जाए, उसने अपने बच्चे भी पालने, उसने मकान का किराया भी देना, उसने अपना दूसरे बच्चों की फीस भी देनी, तो माशी तौर पे हम तकरीबन तबाह बर्बाद हो गए थे। तो एक ये एक मैं समझता हूँ एक एक वजह थी कि मैंने सोचा कि मतलब कि अब माँ बाप बिल्कुल थक चुके हैं, कहते हैं यार हम थक गए हैं, हम रात को 4 बजे के कोई दरवाजा नाक होता हम डर जाते हैं कि फिर पुलिस आना आ जाइए, तो होती पुलिस ही कुछ 4 बजे आती थी, 4 बजे 3 बजे। एक तो ये बात थी, इससे जो बड़ी बात थी मेरे ख्याल में तो वो हमारी सियासी क्यादत के कंप्रोमाइज थे,
ठीक।
हमारी सियासी क्यादत के जो कंप्रोमाइज थे ना, उसने मजबूर किया कि इनकी क्यादत में मजीद सियासत नहीं की जा सकती,
मसलहत कोशी अख्तियार
मसलहत की शीख
की उन
देखी।
लोगों ने जिनकी जिनके नाम लेके और जिनके पैरोकार की हैसियत से आपने इतनी लंबी लंबी
लंबी
जेलें
जेल,
काटी और तशद्दुद सहा।
बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही था। उनके उनका मुसालहाना पॉलिसी, उनकी जब जद्दोजहद कर रहे थे उनकी स्टेटमेंटें मौकफ और होते थे, जब इकतदार दूर से नजर आने शुरू हो गया वो बदलने शुरू हो गए, स्टेटमेंटें बदलनी शुरू हो गई, उन्होंने अपना माजी भुला दिया, सियासी वर्कर को दूर करने शुरू कर दिया, अपॉर्चुनिस्टों को साथ रखना शुरू कर दिया। तो ऐसे हालात में जब तुम माशी तौर पे तबाह बर्बाद हो, सियासी तौर पे तुम्हें कोई फ्यूचर नजर ना आ रहा हो, तमाम लीडरशिप जो है वो कंप्रोमाइज है, तो एक लोअर क्लास के आदमी के लिए किस तौर पे मैंने फिर सोचा है इम्तियाज तो वो भाई चले, जो सियासत तो जो करनी है वो अपनी करनी है, कम से कम माँ बाप को जो थोड़ा एक माशी तौर पे थोड़ा सुकून पहुंचाएं, उनको थोड़े पैसे भेजें, और तो
तो
वो उनको भी जा
1992 में, 1992 में आप बरतानिया आ गए।
बतानी आ गया।
अकरम कायम खानी साहब, आपने जरा मुख्तसरन, चूंकि वक्त की जाहिर है कि किल्लत होती है इस तरह के पॉडकास्ट में, वैसे तो मैं ये कहानियां, न जाने कितनी कहानियां हैं जो अनसुनी रह गई हैं, हमारे सियासी जद्दोजहद की सुनी अनसुनी कहानियां, लेकिन ये बताइए कि आप फिर अफगानिस्तान पहुंचे, फिर लिबिया आए, फिर ये जरा मुख्तसरन मुझे बताइए ये सफर, और इसमें कुछ ऐसे कुछ वाकयात भी जो आपने देखे हों जिन जिनसे आपकी, क्योंकि आपकी सोच में भी, जैसे इम्तियाज ने कहा, आपकी सोच में भी बड़ा बड़ा फर्क आया है, क्योंकि मैं एक तवील अरसे से वाकिफ हूं आपकी जद्दोजहद से, और आप बहुत पैसिफिस्ट और बिल्कुल और तरह की सियासत में अब यकीन रखते हैं, तो ये सफर कैसे कैसे मुकम्मल हुआ?
इस सवाल के जवाब में ये कहूंगा मैं कि बिल्कुल सही बात है, ज़ाहिर वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ भी इंसान अपनी सियासत, अपने रवैयों में, अपने सियासी तरीक़ेकार में तब्दील आता है, उसका ज़ाहिर मज़र है। जो आज मैं हूँ वो बिल्कुल वो नहीं हूँ जो एक ज़माने में था। अच्छा, खैर, एनीवे, वो ये कि उस वक्त हमारी गिरफ्तारी हुई, जो मैंने अभी पहले बताया आपको, जीप जलने के बाद, और उसके बाद कुछ ही अरसे के बाद एक प्लेन हाईजैक हो गया। वो प्लेन हाईजैक हुआ और सलामुल्लाह टीपू साहब ने वो प्लेन हाईजैक किया, और उस प्लेन हाईजैक होने में उन लोगों ने जो है वो उस दौरान में 13-14 दिन जो हाईजैकिंग रही, उस दौरान पे बहुत सारी जगहों पे मेरे इंटरव्यूज हैं, और वो सारे जुल्म की दास्तानें जो हैं वो मेरी मौजूद हैं, जो 13-14 दिनों तक मुझ पर वो तशद्दुद होता रहा, जब तक ये पता नहीं चल गया कि ये हाईजैकर्स कौन हैं। उस वक्त तक वो मुझे मारते रहे कि मैं उन्हें बताऊं कि हाईजैकर्स कौन हैं। जब जब सलामुल्ला बाहर आ गए 2-4 दिनों के बाद, निकल के उन्होंने अपने अपने आप को दिखा दिया, तब थोड़ा सा सुकून मिला। फिर ये था कि इनके पास असला कहाँ से आया, ये कौन कहाँ होते थे, कहाँ छुपे हुए थे, तुम और वो समझते थे कि मैं एक लिंक हूं इन हाईजैकर्स और उनके बीच में।
लेकिन आपका ताल्लुक तो अब्दुल फकार से नहीं था, آپ تو پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں تھے.
جی اس وقت تو ذوالفقار کا کوئی تصور نہیں تھا, یہ ذوالفقار سے پہلے کی بات.
اچھا ٹھیک ہے, وہ بعد میں تشکیل پایا.
جب یہ ذوالفقار سے پہلے کی بات ہے, یعنی ذوالفقار موجود تھی لیکن اس طریقے سے کوئی کاروائیاں وغیرہ کچھ نہیں تھا اس کا. اگر وہ تھا بھی تو کسی حد تک وہ ایک وہ سمجھے تیاری تھی, ایک چھوٹی سی ایک کام وام کو چند لوگ جمع ہو کے کوشش کر رہے تھے آرگنائز کرنے کے لیے, کوئی ایز سچ ایک بڑا موجود نہیں تھا. تو ٹیپو صاحب کی طرف سے ایک لسٹ آئی, جب یہ گورنمنٹ کو بھی پتا تھا تو انہوں نے شروع میں یہ کیا کہ مجھے اور ٹیپو کے والد کو تیار کیا اور مجھے میرا پاسپورٹ اتوار کے دن نازم آباد میں اچانک دکان کھلوائی گئی بائی فورس طریقے سے. بیچارے دکاندار کو اٹھا کے لایا گیا, بولا کھولو, کھول کر کے میری فوٹو کھینچی, میرا پاسپورٹ بنا. پاسپورٹ آفس سنڈے کو بند ہوتا ہے لیکن بنا, بن کے مجھے تیاری کی گئی کہ مجھے بھیجا جائے گا کہ میں ٹیپو سے بات چیت کروں اور ان کے والد ٹیپو کے کہ ہم اس کو رہا کروائیں. تو میں ان سے مستقل کہتا رہا, بھائی وہ میرے کو میں جانتا نہیں ہوں, مجھے کیوں مانے گا وہ میری بات, اس نے اپنی مرضی سے کیا ہوگا. لیکن وہ بزد تھے کہ آپ کو جانا ہے, خیر ہماری مجبوری تھی, کیا کرتے. تو ہتھ کڑیوں کی حالت میں ہم تیاری کر رہے تھے, پھر اچانک ہی میرے خیال میں انہوں نے محسوس کیا کہ وہ شاید, کیونکہ ٹیپو کے وہاں سے اسٹیٹمنٹس آ رہے تھے کہ وہ شاید مانے گا نہیں, تو پھر انہوں نے ٹیپو کے بھائی کو اور ٹیپو کے والد کو اور دوسرے حاجیہ کے ناصر جمال کے بھائی کو بھیجا وہاں پہ ان سے بات چیت کے لیے, اور انہوں نے ریفیوز کر دیا. خیر اس رہائی ہوئی, ہم 54 کے قیدی آخر میں پہلے 100, 150, 125 کی لیے تھی, 105 کی تھی, کرتے کرتے ضیاء الحق 54 پرزنرس کو رہا کرنے پہ تیار ہو گیا. تو جو کہ بعد میں شاید ایک صاحب کم ہو گئے اور ایک نے ریفیوز کر دیا, تو 52 پرزنر ہم لوگ شاید باہر نکلے. ہم باہر آ گئے. باہر آنے کے بعد جہاز طیارہ جو تھا جو ہے وہ پہنچنا تھا دمشق.
اچھا
دمشق میں جو ہے وہ عین موقع سوری لیبیا پہنچنا تھا. ہم لیبیا کے اوپر پرواز کر رہے تھے لینڈنگ کی طرف پرواز کر رہے تھے کہ اچانک لیبین حکام نے انکار کر دیا لینے سے. تو ہم گھومتے رہے, ہم کہاں جائیں. اس کے بعد ہم جنیوا اتر گئے, جنیوا میں جا کے کھڑے رہے اور میرے خیال میں کئی گھنٹے سوتے رہے. ہمیں تو بیہوشی عالم تھا, اتنا طویل سفر تھا. اور اس کے بعد وہاں ہم لوگ سوتے رہے. پھر اچانک کوئی گورنمنٹ نے جو یونائٹڈ نیشن کے لوگوں نے مذاکرات کیے اور ایسی صورت میں سیریا تیار ہو گیا شام کہ ہمیں یہاں لایا جائے. تو اب ہمیں دمشق پھر وہاں سے اٹھا کے لایا گیا, دمشق پہنچ گئے ہم لوگ. دمشق میں پھر ہم اتار لیے گئے. اتارنے کے بعد ہم ایک ہوٹل میں تھے اور وہاں رہے ایک مہینے بھر. اور مہینے کے بعد جو ہے وہ کچھ لوگ جو تھے وہ وہاں چلے گئے, جیسے کہتے ہیں نا سائلم ان کا یونائٹڈ نیشن کر دیا, کسی نے جرمنی, کسی نے سویڈن, کسی کوئی کہیں کوئی ایک بیچ جو تھا وہ لیبیا چلا گیا. اور میں ان چند لوگوں میں سے تھا جنہوں نے جوائن کیا ذوالفقار کو. ہم نے باقاعدہ وہاں جوائن کیا ذوالفقار کو اور ہم وایا انڈیا, وایا دلی ہم کابل آ گئے. ہم کابل میں رہے تو کیونکہ ہمارا اس وقت بلیف تھا, مطلب یہ کہ ہمیں آرم سٹرگل کرنی پڑے گی, آرم سٹرگل کے بغیر پاکستان میں جمہوریت بحال نہیں ہوگی, یہ بلیف تھا. اور یہ بلیف جو تھا اس کی وجہ سے ہم نے اس کو جوائن کیا. لیکن آپ اگر ایمانداری سے دیکھیں کہ ہمیں وہاں جانے کے بعد جو ہمارے ساتھ سب دوست تھے ان سب سے وہاں حالات دیکھنے اور وہاں کی جو صورتحال دیکھنے بعد ہمیں اندازہ ہو گیا بہت جلدی کہ ہم غلط جگہ پھنس گئے ہیں اور یہ کوئی جد و جہد کی جگہ نہیں ہے. یہاں کارکنوں کی سمجھیے کہ ایک طرح کی بے دریغ قربانی ہو رہی ہے کہ یہ قتل عام ہے کہ مطلب بغیر کسی نظریے کے, بغیر کسی سوچ کے ہم لوگوں کو بھیجیں اور لوگ جا کے وہاں مر جائیں. ایک شخص کو مارنا, ایک ضیاء الحق کو مارنا ایک ٹارگیٹ تھا. مطلب نظریاتی طور پہ کوئی نظام کی تبدیلی یا کوئی ایسا نہیں تھا, ہمارا ٹارگیٹ ایک ہی ہوتا تھا, کسی بھی طریقے سے ہم ضیاء الحق تک پہنچ جائیں اور ضیاء الحق مار دیں. اور ہمیں ٹرائب ہمارے دوستوں نے بے شمار کم از کم 10-15 اٹیمپٹ کیے مختلف طریقوں سے, اور مختلف طریقوں سے لوگ پکڑے بھی گئے. کبھی ایک موقع پہ قرآن پاک जो है वो उस तरह की किताब रखी गई और उसको उस पे मंगल गलाप में डाला गया और उसके अंदर जो है वो किया। इस तरीके बहुत अटेम्प्ट हुए लेकिन ज़ियाउल्लाह बचता चला गया। तो ये एक थी। फिर मैं वहां से हमने फैसला किया कि यहां से निकलो। तो फिर एक मौका आया कि लिबियंस चाहते थे कि कजाफी साहब की किताब ग्रीन बुक का को तर्जुमा करें, तो वो अपॉर्चुनिटी थी। तो मैंने कहा जनाब मैं तर्जुमा करने को हाजिर हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए हमारे साथ लिबिया चलिए। तो हमें एक मौका मिल गया हम वहां से निकलने का खामोशी के साथ।
और फिर बरतानिया कब आया?
1990 में जब हमारी गवर्नमेंट जो है ना पहली गवर्नमेंट मेरे ख्याल में खत्म होने वाली थी, खत्म हो गई थी मेरे ख्याल में, या खत्म होने हाँ जाम सादे के लिए थे, हाँ खत्म हो गई थी हमारी गवर्नमेंट के बस खत्म होते ही उस वक्त मुझे ये इतलात मिल गई।
1989-90 की पीपल्स पार्टी
गवर्नमेंट की बात
पहले तो आप फिर उस वक्त इंग्लिश आ गए। अच्छा अब इम्तियाज आखिरी सवाल आपसे ये है क्योंकि ये बहुत दिलचस्प गुफ्तगू है और इसमें कौन लोग थे किले में साथ और अब जो है उनसे रबते हैं जो दोस्त थे पुराने और कुछ दोस्तों का हमने पहले भी जिक्र किया है, आपने कुछ नाम लिए, कुछ अकरम साहब ने नाम लिए, तो वो लोग कहाँ हैं और वो सियासी कारकुन किस हालत में हैं?
देखें उनमें से जितने कारकुन जो हमारे साथ रहे हैं उनमें से मेरे 90% तो बेचारे फोत हो चुके हैं, किसी कोई उम्र का के उस हिस्से में थे, इंसान बीमारियां शुरू हो जाती हैं इंसान मर जाता है, और कई लोग अपनी पार्टी के हाथों एक सियासी तौर पे कत्ल हुए, वो जो सियासत पार्टी करना चाहती थी वो नहीं करना चाहते थे, वो अपनी खुदी में खामोश होकर मर गए, कहीं के माशी हालात इतने थे इतनी लंबी जेलों के बाद टॉर्चर के बाद कहीं को बीवियां छोड़ गई, कहीं मेडिकली तौर पे तबाह हो गए, कोई जहनी तौर पे तबाह हो गए, और उनमें से आज भी अमीन मुगल साहब हैं हमारे, मैं खावनी माशवी अभी भी मेरे साथ है लाहौर में होते हैं, बाकी ज़्यादा लोग फोत हो चुके हुए हैं, कहीं से रब्ता होता है लेकिन अक्सर लोग फोत हो चुके हैं,
या तो फोत हो गए हैं इंतकाल कर गए हैं या कस्मा पुरसी की जिंदगी गुजारी
है। और मुझे एक याद है मैं उसका जिक्र जरूर करता चलूं कि पीपल्स पार्टी का दौर था, को हमारा जो दोस्त एक जिसको सहोल लाई के कतल में फांसी दी गई रजाक झरने को, उसका एक उस्ताद था हमारा बहुत अच्छा दोस्त था बखर का महारता मोहम्मद, उसको पीपल्स पार्टी की हुकूमती सेंटर में, तो मेरी फोन पे बातें रही, उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया क्या हालात है, लेकिन मैंने जो कुछ हो सकता था इंसान दोस्त दोस्तों की हेल्प करते हैं, लेकिन असल हालात मुझे नहीं पता थे बेचारे के हालात माशी हालात कैसे हैं। और जब वह फोत हो गया मुझे फिर दूसरे दोस्तों ने बताया कि जिस बंदे ने पूरी जिंदगी इस पार्टी के लिए जेलें काट दी, को जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी, और वो इसलिए मर गया कि उसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे, वो जो दवाई था वो खरीद नहीं सकता था, तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी जो सेंटर में आज उनके नाम लेते हुए थकती नहीं है जुबान पे कि उन्होंने कुर्बानियां दी, लोगों ने किले काटे, लोगों ने कोड़े खाए, लेकिन जब तुम्हारी मरकज में हुकूमत हो एक आदमी एक पॉलिटिकल वर्कर इसलिए मर जाए कि उस पर दवाई के लिए पैसे नहीं थे।
अकरम कायम खानी साहब आपसे मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि 30 बरस हो गए आपको, 30 बरस से ज्यादा हो गए, लेकिन आपका दिल अटका रहता है और कभी कोई फैज का मेला आप करा रहे हैं, कभी कोई पाकिस्तान का अदबी मेला करा रहे हैं, कभी कोई मौसीकी के प्रोग्राम पाकिस्तान की सकाफत को उजागर करने के लिए करा रहे हैं, तो दिल कैसे लगा मुल्क से बाहर?
बड़ा मुश्किल था। हाय क्या चीज है गरीबुल वतनी होती है, तो वाकई बहुत बड़ा बड़ा सख्त वक्त था, लेकिन इसका इसका जवाब यही था कि हम अपने आप को मसरूफ रखें। तो इब्तदा में तो पीपल्स पार्टी से उम्मीद बंधी रही और आज भी है, आज भी अगर पाकिस्तान की जो सियासी कुवतें हैं अगर ईमानदारी से देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी के अलावा कोई ऐसी जमात ऐसी कुवत है जहाँ कुछ थोड़ी सी कहते ना थोड़ी सी कोई रोशनी नजर आती है जहाँ, तो वो एक ही जमात है जहाँ तक मैं मेरा मेरा ये मानना है। खैर तो उसके लेकिन हम एक्टिविस्ट नहीं रहे, तो हमने अपने दिल को इस तरह किया कि अब बेहतर यह है कि हम कहीं और दिल लगाएं। तो फिर वो ज़ाहिर बाएं बाजू की सोच रखते हुए, प्रोग्रेसिव सोच रखते हुए, सोचा कि क्यों ना जो पाकिस्तानी जो लोग यहाँ बसते हैं उनके अंदर अदब के लिए और उनके कल्चर के लिए काम के, दोस्तों ने मिलकर के फैज़ फाउंडेशन बनाई और मुख्तलिफ किस्म के फ्रंट्स बनाए, उस पर हम काम कर रहे हैं गुज़िश्ता कोई 10-12-15 सालों से, वो बड़ा अच्छा तरीका। मैं समझता हूँ कि आज की इस पॉडकास्ट में ये बात ज़रूर इसको शामिल किया जाना चाहिए कि लोग ये जान लें कि जब तक कौमें अपने असल हीरोज और अपने असल लोगों को याद नहीं करती जो कौमें, उनकी आज़ादियाँ कायम नहीं रह सकती।
इसी नोट पर ख्वातीन हज़रात, ये बहुत अहम बात की अकरम कायम खानी साहब आपने, मैं बहुत ममनून हूँ आपका और इम्तियाज़ अली ख़ान साहब आपका कि आपने वक्त निकाला। और सामईन, ऐसी न जाने कितनी और कहानियाँ हैं जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि सियासी कारकुनों की जो जद्दोजहद रहती है तीसरी दुनिया के किसी भी मुल्क में, मगर हमारे मुल्क पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो जमहूरी आज़ादियों, शहरी आज़ादियों के लिए, इंसानी हकूक़ की बहाली और पासदारी के लिए, वो हमें भूलनी नहीं चाहिए। मैं आप दोनों हज़रात का बहुत ममनून हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।
इस पॉडकास्ट में पेश की जाने वाली गुफ्तगु शुरका की जाती राय पर मबनी है, वॉइस ऑफ अमेरिका का इससे मुत्तफिक होना जरूरी नहीं।
पाकिस्तान की आज़ादी के 75 साल, इस मौके पर वीओए उर्दू आपके लिए ऐसी कहानियां और गुफ्तगु ला रहा है जिनमें बात होगी पाकिस्तान के सियासी, सकाफती और माशरती तनवो के हर पहलू पर। हम पेश करेंगे मुख्तलिफ नुक्ते नजर और फिक्र अंगेज ख्याल। इस तारीखी मौके पर वीओए उर्दू की नशरियात सुनते रहिए। इस खसूसी पॉडकास्ट की अगली किस्त में हम बात करेंगे रेडियो के 75 सालों पर।